नमस्कार श्रोताओ, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम अपने इस अध्ययन में पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से मत्ती रचित सुसमाचार नामक पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं और हम आशा करते हैं कि इस अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए श्रोताओ, आज के इस बाइबल अध्ययन की ओर ध्यान लगाएं और आत्मिक लाभ प्राप्त करें।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के मधुर नाम में आपको मेरा नमस्कार। मित्रों, पिछले अध्ययन में हमने पत्रस के इनकार करने, गतसमनी और महायाजक के सामने यीशु का लाया जाना आदि विषयों पर विचार किया था। आज हम अपने अध्ययन को मत्ती रचित सुसमाचार के 27 अध्याय से आरंभ करेंगे और जिसमें हम इन मुख्य विषयों पर ध्यान करेंगे। यीशु को क्रूस पर चढ़ाए जाने के चारों ओर की घटनाएं, यहूदी महासभा के द्वारा यीशु को पिलातुस के पास पहुंचाना, यहूदा का पश्चाताप, पिलातुस के सामने पूछताछ का होना, बरब्बा का छोड़ा जाना, यीशु का क्रूस पर चढ़ाया जाना, मरना और दफनाया जाना, कब्र का सीलबंद या मुहरबंद करना और पहरेदार बैठाना आदि। मित्रों, अब हम सुसमाचार संदेश की प्रमुख वास्तविकता में पहुंच गए हैं, जो यीशु मसीह का क्रूस पर चढ़ाया जाना है। जब पौलुस प्रेरित कुरिन्थियों को सुसमाचार की परिभाषा देते हैं तो उसने कहा, इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। इसे हम पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय के 3 पद में पढ़ सकते हैं। मित्रों, अब हम लेख की उस अद्भुत घटना के वृतांत के पास पहुंच गए हैं। हम देखेंगे कि मत्ती क्रूस पर चढ़ाए जाने का वास्तविक वृतांत हमें नहीं देते हैं। वास्तव में कोई भी सुसमाचार का लेखक नहीं देता है। वे सिर्फ हमें इतना बताते हैं कि क्रूस के चारों तरफ क्या हुआ। मैं जानता हूं कि कुछ लोग हैं जो लेखाचित्र शब्दों में यह बताने का प्रयत्न करते हैं कि कैसे थरथराते शरीर में कीलें ठोकी गई और किस प्रकार लहू बहकर बाहर निकला, परंतु बाइबल में यह नहीं मिलता है। परमेश्वर की प्रेरणा से लिखी गई वृतांत में यह ऐसे नहीं है। जैसे परमेश्वर ने यीशु को उन आखिरी 3 घंटों के जीवन को, जब वह क्रूस पर था, अंधेरे में आच्छादित कर दिया और कहा, यह कुछ ऐसा है जिसे आप नहीं देख सकते हैं। यह मनुष्य की कल्पना या समझ से बहुत दूर है। पीड़ा को पूर्ण रूप से नहीं समझा जा सकता है। मित्रों, यह एक कार्य संपादन था जो स्वर्ग के पिता की और क्रूस पर के पुत्र के बीच में था। क्रूस पर वेदी बन गई जिस पर परमेश्वर का मेमना, जो जगत के पाप उठा ले जाता है, बलिदान किया गया। मती का साधारण कथन है और उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ा दिया। मित्रों, जब यीशु को गतसमनी में पकड़ लिया गया और उसके बाद से उसे काइफा और महायाजक के सामने लाने के बाद, झूठे गवाहों के गवाही देने के बाद, उसके मारे और हंसी उड़ाए जाने के बाद और पत्रस पर उसे इनकार करने के बाद यह अध्याय शुरू होता है। आगे हम देखते हैं कि महासभा यीशु को पिलातुस के पास ले जाती है। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 27 अध्याय के पहले पद में हम पढ़ते हैं, जब भोर हुई तो सब महायाजकों और लोगों के पुरनियों ने यीशु को मार डालने की सम्मति की। उन्होंने यीशु के विरोध में दोषों को ढूंढ निकाला, अच्छा इकट्ठा किया और अब वे उसे उच्च न्यायालय में ले जाएंगे। वे सोच रहे थे कि उनके पास मुकदमा है जो रोमियो के न्यायालय में मान्य होगा, अर्थात चल जाएगा। हम मत्ती उसके 27 के 2 पद में आगे पढ़ते हैं, लिखा है, और उन्होंने उसे बांधा और ले जाकर पिलातुस हाकिम के हाथ में सौंप दिया। मित्रों, पिलातुस का राजमहल यरूशलेम में ही था, जबकि उसका मुख्यालय कैसरिया में था, जो भूमध्य सागर पर था। वह यरूशलेम में फसह के समय था, क्योंकि नगर यहूदियों से भरा हुआ था जो फसह का पर्व मनाने के लिए यहाँ पर आए थे और साधारणतः ऐसे समय में दंगे हो जाया करते थे। हम मत्ती 27 के 3 पद में आगे पढ़ते हैं, लिखा है, जब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने देखा कि वह दोषी ठहराया गया है तो वह पछताया और वे 30 चांदी के सिक्के महायाजक और पुरनियों के पास फेर लाया। मित्रों, आप देखें कि जब यहूदा इस्करियोती वहां आया तो प्रभु यीशु वहां पर थे। जब मुख्य याजक और अगुए यीशु को पिलातुस के पास ले जा रहे थे तब उस गलियारे में भी यहूदा था, तो यहूदा ने यीशु की ओर फिरकर माफी क्यों नहीं मांगी? ऐसा करने के बदले उसने धार्मिक अगुओं से बात की। हम मत्ती 27 उसके 4 पद में पढ़ते हैं, लिखा है, और कहा, मैंने निर्दोष को घात के लिए पकड़वाकर पाप किया है। उन्होंने कहा, हमें क्या, तू ही जान। दूसरे शब्दों में कहें, यह काम तुमने किया है और अब तुमसे कोई काम नहीं है। एक था जिसके पीछे हम सब थे और हमने तुम्हें कीमत चुकाई है और अब आगे हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। मत्ती 27 उसके 5 पद में हम पढ़ते हैं, तब वह उन सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दी। यह व्यक्ति मंदिर के अहाते से बाहर जाता है और फांसी लगाकर आत्महत्या कर लेता है। यदि वह प्रभु यीशु के पास आता तो उसे क्षमा मिल गई होती। मित्रों, हम मत्ती 27 उसके 6 पद में आगे पढ़ते हैं, लिखा है, महायाजकों ने उन सिक्कों को लेकर कहा, इन्हें भंडार में रखना उचित नहीं क्योंकि यह लहू का दाम है। आप देखें कि वे कितने धर्मनिष्ठ थे कि वे उस पैसे को मंदिर के दान पत्र में नहीं रख सकते थे क्योंकि वह खून का रुपया था। मत्ती 27 के 7 और 8 पद में लिखा है, सो उन्होंने सम्मति करके उन सिक्कों से परदेशियों के गाड़ने के लिए कुम्हार का खेत मोल लिया। इस कारण वह खेत आज तक लोहों का खेत कहलाता है। मित्रों, यह भविष्यवाणी का विशिष्ट या विलक्षण रीति से पूर्ण होना है। हम मत्ती 27 के 9 और 10 पद में आगे पढ़ते हैं, तब जो वचन यिर्मयाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हुआ कि उन्होंने वे 30 सिक्के अर्थात उस ठहराए हुए मूल्य को जिसे इसराइल की संतान में से कितनों ने ठहराया था ले लिए, और जैसे प्रभु ने मुझे आज्ञा दी थी वैसे ही उन्हें कुम्हार के खेत के मूल्य में दे दिया। मित्रों, आप इस भविष्यवाणी को यिर्मयाह की पुस्तक उसके 18 अध्याय और उसके 1 से 4 पद में पाएंगे, और वास्तव में यह उद्धरण जकर्याह की पुस्तक उसके 11 अध्याय उसके 12 और 13 पद से लिया गया है। इसका श्रेय यिर्मयाह को दिया गया है क्योंकि यीशु के दिनों में भविष्यवक्ता के पुस्तकों में से यिर्मयाह की पुस्तक पहली थी और वह भाग पहली पुस्तक के नाम के द्वारा पहचाना जाता था। मित्रों, महत्वपूर्ण बात तो यह है कि जब यहूदा चांदी के 30 सिक्कों के साथ वापस आया तो यीशु वहां पर थे, और इतना ही नहीं परंतु यीशु मृत्यु के मार्ग पर थे, मरने जा रहे थे यहूदा के लिए भी। हमारे प्रभु ने उसे गतसमनी के बाग में उसे अपने पास वापस आने का मौका दिया और उसने कहा, मित्र तुम किस कारण से आए हो। और यहाँ तक कि इस आखिरी घड़ी में भी यहूदा प्रभु यीशु की ओर फिर गया होता तो उसे क्षमा मिल गई होती। हम आगे देखते हैं कि पिलातुस यीशु से प्रश्न पूछते हैं। हम मत्ती उसके 27 अध्याय के 11 पद में पढ़ते हैं, लिखा है, जब यीशु हाकिम के सामने खड़ा था तो हाकिम ने उससे पूछा कि क्या तू यहूदियों का राजा है। यीशु ने उससे कहा, तू आप ही कह रहा है। मित्रों, आप देखें कि धार्मिक अगुवे यीशु से छुटकारा पाना चाहते थे क्योंकि वे उसे इष्ट निंदा करने वाला मानते थे। आपको याद है कि जब महायाजक ने शपथ दिलाकर यीशु से कहा था कि क्या तू परमेश्वर का पुत्र है, तो यीशु ने कहा कि वह है, और आगे उसने कहा, अब से तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान के दाहिने ओर बैठा हुआ और सर के बादलों पर आता हुआ देखोगे, जिसे हम मत्ती 26 के 64 पर में पाते हैं। धार्मिक अगुओं के लिए यह इष्ट निंदा थी और वे इस दोष के लिए पत्थरवाह कर सकते थे, परंतु रोमी साम्राज्य ने मृत्यु दंड देने का अधिकार यहूदियों को नहीं दिया था, इसलिए उन्हें यीशु को पिलातुस के हाथ में सौंपना पड़ा, उस दोष के साथ में जो रोमी साम्राज्य के कानून से मेल खाता हो। दोष का कारण वह होना चाहिए था जो स्थिर रहे, इसलिए उन्होंने यीशु पर यहूदियों का राजा होने का दावा करने का दोष लगाया। इस दोषारोपण के उत्तर में यीशु ने कहा, तुमने स्वयं कह दिया, या ऐसा ही है जैसे तुमने कहा है। हम मत्ती सुसमाचार उसके 27 अध्याय और उसके 12 पद में पढ़ते हैं, जहाँ पर लिखा है, जब महायाजक और पुरनिये उस पर दोष लगा रहे थे तो उसने कुछ उत्तर नहीं दिया। उन्होंने कई दोष उस पर लगाए परंतु हमारे प्रभु ने उनका उत्तर देने के लिए कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। हम मत्ती 27 उसके 13 और 14 पद में आगे पढ़ते हैं, इस पर पिलातुस ने उससे कहा, क्या तू नहीं सुनता कि ये तेरे विरोध में कितनी गवाहियां दे रहे हैं। परंतु उसने उसको एक बात का भी उत्तर नहीं दिया, यहाँ तक कि हाकिम को बड़ा आश्चर्य हुआ। मित्रों, वह परमेश्वर का मेमना था जो ऊन कतरने वाले के समान चुपचाप था। हम यसाया की पुस्तक उसके 53 अध्याय के 7 पद में इसे देख सकते हैं। आगे हम पढ़ते हैं मत्ती 27 उसके 15 और 16 पद में लिखा है, और हाकिम की यह रीति थी कि उस पर्व में लोगों के लिए किसी एक बंधुए को जिसे वे चाहते थे छोड़ देता था। उस समय बरब्बा नाम का व्यक्ति उन्हीं में से एक नामी बंधुआ था। मित्रों मत्ती हमें वहां पर जो घटना घटी उसके बारे में सिलसिलेवार जानकारी नहीं देते हैं, परंतु दूसरे सुसमाचार के लेखक इस महान विषय के बारे में बहुत कुछ लिखते हैं। परंतु मत्ती सिर्फ घटना की वास्तविकता प्रकट करता है, अर्थात पिलातुस ने महसूस कर लिया कि धार्मिक शासकों के पास उसके मृत्युदंड की मांग करने के लिए कोई आधार नहीं है। यीशु ने रोमी साम्राज्य के विरोध में लोगों को नहीं भड़काया था, दूसरों ने किया था, परंतु यीशु ने नहीं। पिलातुस के पास में एक समस्या थी, वह यरूशलेम में शांति बनाए रखना चाहता था और धार्मिक अगुओं को प्रसन्न करना चाहता था, परंतु उसने महसूस किया कि वह प्रभु यीशु को मनमाने ढंग से मृत्युदंड नहीं दे सकता है, इसलिए उसने समस्या का समाधान करने का कोशिश किया, जबकि यह उसकी आदत थी कि यहूदियों के पर्व में वह एक यहूदी बंदी को छोड़ता था, तो उसने भीड़ को चुनाव करने का मौका दिया कि वह किसे छोड़े, यीशु को या कुख्यात कैदी बरब्बा को, जो हत्या करने का दोषी, चोरी और देशद्रोही जैसे बातों में जुड़ा हुआ था। मित्रों हम मत्ती 27 उसके 17 पद में आगे पढ़ते हैं, जहां पर हमें इस प्रकार से लिखा हुआ मिलता है, सो जब वे इकट्ठे हुए तो पिलातुस ने उनसे कहा, तुम किस को चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं, बरब्बा को या यीशु को जो मसीह कहलाता है। पिलातुस ने सोचा कि निश्चित रूप से भीड़ यीशु को छोड़ने की मांग करेगी, क्योंकि यीशु और बरब्बा के बीच का विरोध बहुत ही स्पष्ट था। मत्ती 27 उसके 18 पद में हम पढ़ते हैं, क्योंकि वह जानता था कि उन्होंने उसे डाह से पकड़वाया है। पिलातुस एक चतुर राजनीतिज्ञ था, वह देख सकता था कि क्या होने जा रहा है और उसे पूर्ण भरोसा था कि भीड़ बरब्बा को क्रूस पर चढ़ाने की मांग करेगी और यीशु को छोड़ देने की, और ऐसी परिस्थिति में उसे यह एक खुशी प्रदान करेगी। मत्ती 27 अध्याय उसके 19 पद में लिखा है, जब वह न्याय की गद्दी पर बैठा हुआ था तो उसकी पत्नी ने उससे कहला भेजा कि तू उस धर्मी के मामले में हाथ ना डालना, क्योंकि मैंने आज स्वप्न में उसके कारण बहुत दुख उठाया है। मित्रों पिलातुस की पत्नी को जितना अंधविश्वासी होना था वह थी, शायद वह अदृश्य धर्मों में बंध चुकी थी और इस प्रकार की चीजें शैतानी भी हो सकती थी। मैं नहीं मानता कि यह चेतावनी परमेश्वर की ओर से आई थी। यदि वह सही स्त्री होती तो वह यीशु से पूछताछ करती और उसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करती। जो भी हो उसने ऐसा नहीं किया, वह मात्र एक अंधविश्वासी थी, इसलिए उसने अपने पति से कहा कि उसके साथ कुछ न करना। हम मत्ती 27 अध्याय उसके 20 पद में आगे पढ़ते हैं, महायाजकों और पुरनियों ने लोगों को उभारा कि वे बरब्बा को मांग लें और यीशु को नाश कराएं। मित्रों आप देखें कि धार्मिक अगुए भी अपने आप में चतुर राजनीतिक थे। उन्होंने भीड़ को यह कहने के लिए कहा कि यीशु को क्रूस पर चढ़ा दे और बरब्बा को छोड़ दे। मत्ती 27 उसके 21 पद में लिखा है, हाकिम ने उनसे पूछा कि इन दोनों में से किसको चाहते हो कि तुम्हारे लिए छोड़ दूं? उन्होंने कहा, बरब्बा को। पिलातुस उनके उत्तर से अचंभित हुआ और थोड़ा पीछे हट गया। वह नहीं जानता था कि धर्म इतनी नीचता तक उतर सकता है। आगे हम मत्ती 27 उसके 22 पद में पढ़ते हैं, पिलातुस ने उनसे पूछा, फिर यीशु को जो मसीह कहलाता है क्या करूं? सब ने उससे कहा, वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। मित्रों आप जरा कल्पना कीजिए कि एक रोमी न्यायी भीड़ से पूछ रहा है कि वह कैदी के साथ क्या करे। पिलातुस एक न्यायी था और उसे ही निर्णय लेना था। यूहन्ना रचित सुसमाचार हमें बताता है कि पिलातुस ने यीशु को अकेले में बुलाकर कई बार प्रश्न पूछे। उसके विचार से ऐसा लगता है कि वह कह रहा था कि यीशु तू मेरा साथ दे तो मैं तुम्हें इससे बाहर निकाल सकता हूँ और वो मुझे इस भयंकर मुसीबत वाली स्थिति से छुटकारा देगी जिसमें मैं फंसा हूँ। परंतु प्रभु यीशु ने अपने बचाव में कुछ भी नहीं किया। मित्रों जब हम इस हंसी उड़ाने वाली पूछताछ या परीक्षा का विश्लेषण करते हैं तो हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि पिलातुस का इसमें परीक्षा हो रहा था और वास्तव में यीशु उसका न्याय कर रहा था। पिलातुस को एक निर्णय लेना था जो उसके संगत हो, इसलिए उसने भीड़ से पूछा, तो मैं यीशु के साथ क्या करूं जो मसीह कहलाता है। जब उसका उत्तर आया तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया कि उसे क्रूस पर चढ़ाया जाए। मित्रों हम मत्ती 27 उसके 23 पद में पढ़ते हैं, जहां पर लिखा हुआ है, हाकिम ने कहा, क्यों उसने क्या बुराई की है? परंतु वे और भी चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। भीड़ के पास कभी कोई एक कारण नहीं होता है। हम मत्ती 27 उसके 24 पद में आगे पढ़ते हैं, जब पिलातुस ने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता परंतु इसके विपरीत हुल्लड़ होता जाता है तो उसने पानी लेकर भीड़ के सामने अपने हाथ धोए और कहा, मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूँ, तुम ही जानो। पिलातुस ने पानी से भरा बर्तन लिया और अपने हाथों को धोया, यह घोषित करने के लिए कि यीशु की मृत्यु के साथ उसका कोई भी लेना देना नहीं है। परंतु यह उतना आसान नहीं था, उसे एक निर्णय लेना था जो प्रत्येक व्यक्ति को लेना है। जॉन न्यूटन ने इस प्रकार से लिखा है, तुम मसीह के बारे क्या सोचते हो, वही परीक्षा है। अपनी अवस्था और परियोजना दोनों की जांच करने के बाद तुम बाकी के अन्य में सही नहीं हो सकते, जब तक कि तुम उसके बारे में सही नहीं सोचते हो। यद्यपि पिलातुस ने अपने हाथ धो लिए, परंतु इसका कड़वा व्यंग यह है कि ये शब्द कलीसिया के पुराने धर्मसार में आज भी पाए जाते हैं। पेंतुस पिलातुस के शासन में क्रूस पर चढ़ाया गया, यीशु का लहू उसके हाथ पर था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने कितनी बार उन्हें धोया। हम मत्तयी सुसमाचार उसके 27 अध्याय और उसके 25 पद में आगे पढ़ते हैं, लिखा है, सब लोगों ने उत्तर दिया कि इसका लहू हम पर और हमारी संतान पर हो। दुर्भाग्यवश वह एक समस्या थी और यह प्रमाणित की जा सकी है। हम मत्ती 27 उसके 26 पद में आगे पढ़ते हैं, जहां पर लिखा है, इस पर उसने बरब्बा को उनके लिए छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवाकर सौंप दिया कि क्रूस पर चढ़ाया जाए। पिलातुस स्वयं इस निष्ठा पर कृपा करने की इच्छा करता था, परंतु उसे एक निर्णय लेना था और उसका निर्णय वास्तव में एक अस्वीकार करना था। हम मत्ती 27 उसके 27 पद में पढ़ते हैं, तब हाकिम के सिपाहियों ने यीशु को किले में ले जाकर सारी पलटन उसके चाहों ओर इकट्ठा की। ये सैनिक उसके साथ जैसा व्यवहार करना चाहते थे वैसा करने के लिए स्वतंत्र थे। वह इस निर्मम निर्दय भीड़ के लिए एक खिलौना बन गया। मत्ती 27 उसके 28 और 29 पद में लिखा है, और उसके कपड़े उतार कर उसे किरमिजी बागा पहनाया और कांटों का मुकुट गूंथ कर उसके सिर पर रखा और उसके दाहिने हाथ में सरकंडा दिया और उसके आगे घुटने टेक कर उसे ठड्डे में उड़ाने लगे कि हे यहूदियों के राजा, नमस्कार। ये बहुत ही डरावना था जो उसके साथ हो रहा था। मत्ती 27 उसके 30 पद में हम आगे पढ़ते हैं, जहां पर लिखा है, और उस पर थूका और वही सरकंडा लेकर उसके सिर पर मारने लगे। सैनिकों ने इस अवसर का लाभ उठाया कि वे उसके साथ कुछ मजा करें और इससे पहले कि वह क्रूस पर चढ़ाया जाए, जैसे कि वह मरने को जा ही रहा था, तो उसको विकलांग कर देना और जो कुछ भी उसके साथ करना चाहते थे कर सकते थे, वे करना चाहते थे। उन्होंने एक रोमी क्रूर खेल खेला जिसे गर्म हाथ कहते हैं, जो कैदियों के साथ खेला जाता था। इस खेल में सभी सैनिक अपना मुक्का कैदी को दिखाते थे, उसके बाद वे कैदी की आंख पर पट्टी बांध देते थे और तब उनमें से एक जोरदार मुक्का उसे मारता था और जितना अधिक जोर से कैदी को मार सकते थे उतना ही मारना था। उसकी आंख की पट्टी को खोल देते थे और यदि वह होश में होता था तो उसे पूछते थे कि किस सैनिक ने तुम्हें मारा है, अर्थात कैदी सही सैनिक को नहीं बता पाता था। तो इस खेल को तब तक खेलते थे जब तक कि उसको मार मार कर भुरता नहीं बना देते। मैं विश्वास करता हूं कि उन्होंने प्रभु यीशु को मार मार कर उसको इतना जख्मी कर दिया था कि आप उसे नहीं पहचान पाते। यशायाह की पुस्तक उसके 52 अध्याय और 14 पद में लिखा है, जैसे बहुत से लोग उसे देखकर चकित हुए क्योंकि उसका रूप यहाँ तक बिगड़ा हुआ था कि मनुष्य का सा ना जान पड़ता था और उसकी सुंदरता भी आदमियों की सी न रह गई थी। मित्रों, हम मत्ती 27 उसके 31 और 32 पद में आगे पढ़ते हैं, जहां पर लिखा है, जब वे उसका ठड्ढा कर चुके तो वह बागा उस पर से उतार कर फिर उसी के कपड़े पहनाए और क्रूस पर चढ़ाने के लिए ले चले। बाहर जाते हुए उन्हें शमौन नाम एक कुरेनी मनुष्य मिला, उन्होंने उसे बेगार में पकड़ा कि उसका क्रूस उठा ले चले। यीशु को अपमान असहनीय पीड़ा के लिए दे दिया गया था। हमें यहाँ पर ऐसा बताया गया है कि मानो वह इतना कमजोर हो गया था कि वह अपना क्रूस नहीं उठा पा रहा था, इसलिए कि सैनिकों ने उसके साथ जो भी किया था वह बहुत ही बुरा था। अब हम आगे देखते हैं क्रूस पर चढ़ाया जाना। मत्ती 27 उसके 33 पद में लिखा है, और उस स्थान पर जो गुलगुता नाम की जगह अर्थात खोपड़ी का स्थान कहलाता है पहुंचकर। मित्रों, उस स्थान को पहचाना जा सकता है और मैं विश्वास करता हूं कि गोर्डन्स कलवरी, जिसका नाम जनरल गोर्डन के नाम पर पड़ा, जिसने संभवतः घूमने के दृश्य से गोलगथा को चुना था। मैंने इस क्षेत्र को तस्वीर में चारों तरफ से देखा है। इतने वर्षों बाद और जो कुछ भी यरूशलेम नगर के साथ हुआ था, कुछ भी अनुमान लगाना कठिन है। परंतु निश्चित रूप से गोर्डन के स्थलाकृति के चुनाव बाइबल के गोलगथा के विश्लेषण के बहुत करीब है। यह वह स्थान है जो खोपड़ी के सदृश दिखता है। मत्तयी सुसमाचार 27 अध्याय उसके 34 पद में हम पढ़ते हैं, उन्होंने पित पिलाया हुआ दाखरस उसे पीने को दिया, परंतु उसने चख कर पीना ना चाहा। मित्रों, यह भजन संहिता 69 उसके 31 का पूर्ण होना है। और लोगों ने मेरे खाने के लिए इंद्रियान दिया और मेरी प्यास बुझाने के लिए मुझे सिरका पिलाया। तब हम मत्ती उसके 27 अध्याय और 35 पद को पढ़ते हैं, तब उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया और चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। यह भविष्यवाणी भजन संहिता 22 से है, जो यीशु के क्रूस की मृत्यु का एक लेखा चित्र प्रस्तुत करती है। भजन संहिता 22 उसका 18 लिखा है, वे मेरे वस्त्र आपस में बांटते हैं और मेरे पहरावे पर चिट्ठी डालते हैं। तब हम 27 अध्याय के 36 पद को पढ़ते हैं, लिखा है, और वहां बैठकर उसका पहरा देने लगे। मेरे विचार के अनुसार यहां पर हम मानवता को देखते हैं जो अपनी नीचता तक पहुंच गई है। आपको मानव की नीचता लड़ाई झगड़े वाली जगह पर जाकर देखने की आवश्यकता नहीं है, या कैद खाने या जेल में देखने के लिए जरूरत नहीं है। आप उसे यहां पर देख सकते हैं, बैठकर वे उसे देख रहे थे। मैं यह विश्वास करता हूं कि तर्शीस का शाउल भी यहां पर इस भीड़ में था। बाद में जब उसने तीमुथियुस को पत्र लिखा, तब उसने अपने आप को सबसे बड़ा पापी कहा, जिसे हम पहला तीमुथियुस 1:15 पद में पाते हैं। और मैं विश्वास करता हूं कि उसने अपने आप को वैसा इसलिए कहा क्योंकि वह सबसे बड़ा पापी था। मत्ती 27 अध्याय उसके 37 पद से लेकर के 40 पद तक में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, और उसका दोष पत्र उसके सिर के ऊपर लगाया कि यह यहूदियों का राजा यीशु है। तब उसके साथ दो डाकू एक दाहिने और एक बाएं क्रूस पर चढ़ाए गए, और आने जाने वाले सिर हिला हिलाकर उसकी निंदा करते थे और यह कहते थे कि हे मंदिर के ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले, अपने आप को तो बचा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्रूस पर से उतर आ, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्रूस पर से नीचे उतर आ। यहां पर ध्यान दे कि उन्होंने संदेह उत्पन्न किया कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। मित्रों, वे बहुत ही थोड़ा जानते थे क्योंकि वह परमेश्वर का पुत्र है, वह क्रूस से नीचे नहीं उतरेगा। इस समय उसे किसी बात को प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि अब वह संसार के पापों के लिए मर रहे हैं। हम मत्ती 27 अध्याय उसके 41 पद में आगे पढ़ते हैं, इसी रीति से महायाजक भी शास्त्रियों और पुरनियों समेत इकट्ठा हो करके कहते थे कि इसने औरों को बचाया और अपने आप को नहीं बचा सकता। मित्रों, आप सोचते होंगे कि यीशु को लहूलुहान कर क्रूस पर चढ़ाने की सफलता के बाद वे घर चले गए होंगे और उसे शांति से मरने के लिए छोड़ दिए होंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वे वहीं रुककर उसको ताना मारते रहे जब तक कि उसकी देह में जीवन था, वे ऐसा ही करते रहे। हम मत्ती 27 अध्याय उसके 42 पद में पढ़ते हैं, लिखा है, यह तो इसराइल का राजा है, अब क्रूस पर से उतर आए तो हम उस पर विश्वास करें। मित्रों, यह बिल्कुल सच बात है कि इसने दूसरों को बचाया और अपने को नहीं बचा सकता। यदि उसे मुझे और आपको बचाना है तो उसे क्रूस पर मरना ही पड़ेगा। यदि वह क्रूस पर से नीचे उतर गया तो मुझे और आपको अपने पापों के लिए मरना पड़ेगा, क्योंकि हम इसके ही लायक हैं। हम नरक का दंड पाने वाले पापी हैं और मसीह वहां क्रूस पर हमारी जगह ले रहे थे। जिस प्रकार उसने बरअब्बा का स्थान लिया, ठीक उसी प्रकार उसने हमारा स्थान भी ले लिया। अब क्रूस पर से उतरे तब हम इस पर विश्वास करेंगे। क्या ये उस पर विश्वास करते? मैं नहीं सोचता कि वे ऐसा करते। हम मत्ती 27 अध्याय उसके 43 पद में पढ़ते हैं, उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा, यदि वह इसको चाहता है तो अब इसे छुड़ा ले, क्योंकि इसने कहा था कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। मित्रों, आप यहां पर देख सकते हैं कि भीड़ इस बात को समझ गई थी कि यीशु ने ईश्वरत्व का दावा किया था। मत्तयी सुसमाचार 27 अध्याय उसके 44 पद में लिखा है, इसी प्रकार डाकू भी जो उसके साथ क्रूस पर चढ़ाए गए थे उसकी निंदा करते थे। मत्ती हमारे ध्यान को उन दो डाकुओं की ओर ले जाते हैं जो उसके साथ क्रूस पर चढ़ाए गए थे, और सच बात तो यह है कि वे भी धार्मिक शासकों के साथ यीशु का मजाक उड़ाने में शामिल हो गए। वह हमारे ध्यान को उस ओर नहीं ले जाता है कि उसमें से एक डाकू मन फिराकर यीशु को ग्रहण किया। मत्तयी सुसमाचार में जो राज्य के बारे में बताया गया है वह पृथ्वी का राज्य है, और जिस डाकू ने पश्चाताप किया उसी दिन यीशु के साथ स्वर्गलोक में चला गया। मित्रों, हम मत्ती 27 अध्याय उसके 45 पद में पढ़ते हैं, दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधेरा छाया रहा। हमारे प्रभु को क्रूस पर तीसरे पहर में चढ़ाया गया था, जो सुबह के 9 बजे का समय था, और दोपहर 12 बजे तक जो कुछ भी वे परमेश्वर के पुत्र के साथ करना चाहते थे मनुष्यों ने किया, और दोपहर के समय अंधेरा छाने लगा और क्रूस एक वेदी बन गई जिसमें परमेश्वर का मेमना जो संसार के पापों को उठा ले जाता है बलिदान किया गया था। मित्रों, हम मत्ती 27 अध्याय के 46 पद में आगे पढ़ते हैं, तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा सबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हम इस प्रश्न का उत्तर भजन संहिता 22 में पाते हैं, जो शब्दों के साथ आरंभ होता है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, आप मेरी सहायता करने से इतना दूर क्यों हैं, और मेरी पुकार भर शब्द से दूर क्यों हैं। तब हम पद 3 में उत्तर को पढ़ते हैं, भजन संहिता 22:1-3, परंतु तू तो पवित्र है, जब मेरे पाप यीशु पर लादे गए तो परमेश्वर को उसे त्यागना पड़ा। यदि मेरे और आपके पापों को वे अपने ऊपर में ले रहे हैं तो हमारे उद्धारकर्ता को मरना ही है। मित्रों, हम मत्ती 27 अध्याय और उसके 47 और 48 पद में आगे पढ़ते हैं, जो वहां खड़े थे उनमें से कितनों ने यह सुनकर कहा, वह तो इलिया को पुकारता है। उनमें से एक तुरंत दौड़ा और स्पंज लेकर सिरके में डुबोया और सरकंडे पर रखकर उसे चुसाया। मित्रों, क्यों इस भविष्यवाणी को पूरा करना है जो भजन संहिता 69 उसके 21 में है, और लोगों ने मेरे खाने के लिए इंद्रायन दिया और मेरी प्यास बुझाने के लिए मुझे सिरका पिलाया। तब हम मत्ती 27 उसके 49 और 50 पद में आगे पढ़ते हैं, औरों ने कहा, रह जाओ, देखें एलिया उसे बचाने आता है कि नहीं। तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए। मित्रों, इस पर आप ध्यान दें, जिसका मतलब है कि उसने अपनी आत्मा को त्याग दिया। मित्रों, एक सेवक होने के नाते मैंने अक्सर मृत्यु के समय बड़बड़ाने और घबराहट से भरे हुए लोगों को सुना है, जो आखिरी समय तक सांस को पाना चाहते हैं, परंतु हमारे प्रभु उस तरीके से नहीं गए। उसने अपनी आत्मा को स्वयं दे दिया, अर्थात वह अपनी इच्छा से मर गए। मित्रों, यहाँ पर हमारा अध्ययन समाप्त होता है और हम अगले अध्ययन में पुनः मिलेंगे, और तब तक आप इस वचन पर अवश्य विचार करें, अर्थात ध्यान दें कि प्रभु यीशु आपके पापों के बदले में क्रूस पर चढ़ाए गए। यदि आप अपने पापों को उसके सामने मान लेंगे तो वह आपको क्षमा प्रदान करेंगे, अर्थात आपको उद्धार देंगे। क्या आप तैयार हैं? प्रभु आपको आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
आओ मिलकर हम करें ईश्वर का धन्यवाद, बीते क्षणों में संग रहा है, अभी है मेरे साथ। आओ मिलकर हम करें ईश्वर का धन्यवाद, बीते क्षणों में संग रहा है, अभी है मेरे साथ। जिसने हमारे हाथ खुद का जान दिया। संग रहा है, अभी है